दर्शन की आवाज में यशपाल द्वारा रचित दिव्या बौद्धकालीन उपन्यास का वाचन सुनिए। मधु पर्व। कला की अधिष्ठात्री राजनरट की देवी मल्लिका की पुत्री रुचिरा अकाल में काल कवलित हो गई। देवी इस शोक से अधीर होकर बहुत समय तक कला और समाज से विरक्त रही। संपूर्ण सागल नगरी मल्लिका के शोक से 2 वर्ष तक शोकातुर और नीरस रहकर रात्रि में दीपहीन प्रदेश की भांति निष्प्रभ बनी रही। देवी मल्लिका ने वीणा पाणी देवी सरस्वती के प्रति कर्तव्य निष्ठा से अपना असह्य शोक सहकर मन को वश किया। उन्होंने निश्चय किया चैत्र पूर्णिमा की संध्या मधुपर्व उत्सव के समय समाज में पुनः प्रवेश करेंगी। सागल के मनोहर और विशाल ताल पुष्करणी में जल और तट पर जल लहरें ले रहा था। सूर्यास्त में भी 1 पहर शेष था, परंतु जहां तक दृष्टि जाती जनसमूह उमड़ रहा था। उस बढ़ते हुए विस्तार में जन उत्सव का मंडप ऐसा लग रहा था जैसे वर्षाकाल की बाढ़ से दूर तक फैल गए नदी के जल में कोई छोटा सा द्वीप हो। मंडप कलशों कदली स्तंभों तोरणों बसंत आरंभ में पल्लवित आम्रपत्र के बंधनवारों और मंजरियों से सुसज्जित था। वातावरण अनेक प्रकार के पुष्पों की गंध और सुगंधित ढूमरों से सुरभित था। सिर पर ऊंचे श्रेष्ठान बांधे पीठ पर ढाल लटकाए हाथ में भाला लिए राजपुरुष उत्सुकता से उबरते जनप्रवाह से मंडप के मार्ग और मंडप में गण परिषदों के सदस्यों सामंतों अभिजात वंशजों अग्रश्रेष्ठियों श्रेणी जेठकों और कुल नारियों के स्थानों की रक्षा कर रहे थे। सूर्य छिटिन से उतर जाने पर सुश्री सबल अश्वारोही भद्रगण के रथ सुंदर वस्त्र धारण किए द्रुतगामी शिविर वाहकों के कंधों पर सेविकाएं और अश्वारोही भद्रगण जन प्रवाह के बीच सुरक्षित मार्ग से मंडप की ओर आने लगे। मंडप के सोपान पर खड़े चारण तुरही बजा बजा कर उनका स्वागत कर रहे थे। गण परिषद के सदस्यों और विशिष्ट गण के मंडप में प्रवेश करने पर चारण उनके नाम वंश और पद की घोषणा करके उनके लिए निर्दिष्ट आसन देने लगे। भद्र समाज के रथ अश्व और सेविकाएं आरोहियों को मंडप द्वार पर छोड़कर उनके चावड़धारी दासों और कंचुकियों सहित मंडप के रक्षणी भाग की परिक्रमा करके पृष्ठभाग में जा पंक्तिबद्ध खड़े होने लगे। अभिजात पुरुष और कुल नारियां अपने वर्ण और वंश की स्थिति के अनुकूल और पर्व के योग्य वस्त्राभूषण धारण किए ही थे। ब्राह्मण स्वर्ण के तार से कढ़े लाल रेशम के उसनीसों से सिर के केशों को बांधे थे। उनके मस्तक और भुजाओं पर श्वेत चंदन का खौर था। उनके समश्रु मुंडे हुए उनके कंठ की मुक्ता मालाओं में कृष्ण रुद्राक्ष शोभित थे। कंधों से लहराते उत्तरीय के नीचे अस्पष्ट झलकती रेखा कटि के नीचे स्वच्छ अंतरवासक पर पीत यज्ञोपवीत के रूप में प्रकट थी। कांच लगे स्वच्छ अंतरवासक पादत्राण को स्पर्श कर रहे थे। क्षत्रिय स्वर्ण खचित शुभ्र वस्त्र धारण किए थे। ऊंची लंबी नाक के नीचे मूछे 2 बिंदुओं के डंकों की भांति गालों की ओर चढ़ी गई थी। उनके कानों कंठभुजा और कलाइयों पर रत्नजटित आभूषण थे। विस्तृत वक्षस्थल से सूक्ष्म कटी तक शरीर चुष्ट अंगरखों में बंधे थे। कटी से जानू तक कांच कसे अंतरवासक पिंडलियां और पांव पादत्राणों से कसे हुए थे। कटी से रत्नजनित मूठ के खड़ग झूल रहे थे। सृष्टियों के वस्त्र बहुमूल्य परंतु ढीले ढाले थे। गण परिषद के सदस्य कंधों पर केसरी कंचुक धारण किए थे। कुछ यवन सामंतों के सिर पर चोटीदार टोपियां घुटनों तक ढीले अंगरखे पाजामे और पांव में ढीले जूते थे। कुछ ने आर्यवेश अपना लिया था। कुछ कुलनारियों के प्रसाधन और वेश विन्यास में विशेष लालित्य था। मुक्तालड़ियों द्वारा विभिन्न प्रकार से गूंथे गए उनके केशों पर पुष्प के अर्धचंद्र किरीट शोभायमान थे। मस्तक कान कंठ बाहुमूल कलाई और अंगुलियां चंद्रिका तुलिका लेखन कुंडल हार माला अंगद वलय और अंगूठियों से सज्जित थे। उनके कंधों पर अनेक बलखाए झीने उत्तरीय के नीचे मेरुदंड पर गांठ बांधे कंचुक वस्त्र सम्मुख वक्ष की ओर फैलकर सुचिकन वर्टलों में उभर आए थे। ऊपर पुष्ट उरोज और नीचे पुष्ट निटम्ब डमरू मध्य के समान कति पर स्वर्ण की मेखलाएं रत्नजटित नीवी बंध से 3 लड़ियों में कति नितंब के मध्य अधोभाग की परिक्रमा कर वर्तुल आकारों को स्पष्ट कर रही थी। मेखलाओं की लड़ियों में किंकनियां झूल रही थी। मेखला बंध से उनके शातक मयूर पुष्प के रूप में फैलकर आलक्त रंजित और आभूषणों से वेष्टित चरणों के नीचे बिछ आस्तरणों का स्पर्श कर चरणों को छिपाए थे। उनके चारों ओर अनेक पुष्पों की सुगंधियां दूर तक फैल रही थी। प्रायः सभी यवन रमणियां आर्य स्त्रियों का वेश अपना चुकी थी। आकाश में चैत्र की चांदनी छिटक गई। वेदी के चारों ओर तथा मार्ग पर दीप दंड प्रज्वलित हो गए। वयोवृद्ध मिथोद्रस महाप्रतापी धार्मिक यवनराज मिलिंद के राज्यकाल में मद्र साम्राज्य के महासेनापति थे। मद्र के गणराज्य में उन्होंने गणपति का पद स्वीकार कर लिया। उनके आसन ग्रहण कर लेने पर मंगलवाद्य और मंगलाचरण आरंभ हुआ। वेदी के सोपान पर खड़े चारण ने पुनः तुर्यनाद करके घोषणा की कला की अधिष्ठात्री नगर श्री राजनर्थ की देवी मल्लिका सभास्थल में पधार रही है। जनसागर इस घोषणा से के झंझावात से तरंगित हो उठा। जमसमूह की ग्रीवाएं उठ गई और दृष्टि मार्ग के पश्चिम छोर पर चली गई। दीप दंडधारी अश्वारोहियों के पीछे रथ चले आ रहे थे और रथों के पीछे फिर दीप दंडधारी अश्वारोही। रथ शीघ्र ही मंडप के समीप जनप्रवाह में आ पहुंचे। सब ओर से कला की देवी नगर श्री देवी मल्लिका का जयघोष होने लगा। यत्न से रखे पुष्पों और मालाओं की वर्षा मल्लिका के रथ पर होने लगी। अधिकांश पुष्प और मालाएं रथ का स्पर्श कर मार्ग पर गिर जाते। कुछ पुष्प और मालाएं रथ के भीतर पहुंच पुष्पों के अंबार पर गिर फिसल कर नीचे आ जाते। मल्लिका कृतज्ञतापूर्ण नेत्रों से कर जोड़े अश्वित वदन मस्तक नवा दृष्टि की पहुंच तक फैले उद्वेलित नरमुंडों के सागर का अभिवादन स्वीकार कर रही थी। मंडप में पहुंचकर नर्तकी ने विशिष्ट पुरुषों का आदर ग्रहण किया और गणपति के समीप आसन पर बैठ गई। देवी के रथ के पीछे 6 रथों पर उनकी विशिष्ट शिष्याएं कला की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आई थी। चारण ने पुनः तुर्य बजाया। मंगलवादियां रुककर भेरी बजने लगी। नृत्य संगीत से पूर्व तक्षशिला और मगध से शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा पूर्ण करके आए युवकों ने शस्त्र कौशल की प्रतियोगिता का कार्यक्रम था। इस प्रतियोगिता के आधार पर ही अभिजात युवक मद्र गणराज्य की सेना में पदों के अधिकारी होते थे। चारण ने घोषणा की, धर्मष्ट महापंडित देव शर्मा के पौत्र आयुष्मान विनय शर्मा, महासामंत सर्वार्थ के पुत्र आयुष्मान इंद्रदीप, गण संवाहक आचार्य प्रवर्धन के पुत्र आयुष्मान वसुधीर, गणपूरक सामंत कार्टवीर के पुत्र आयुष्मान सकृद, महाशाल समर्थक के पुत्र आयुष्मान रुष्टेश और महाश्रेष्ठि प्रेष्ठ के पुत्र आयुष्मान पृथ्वीसेन। 6 युवक सैनिक वेश में शरीर पर वर्म और सिर पर शिरस्त्राण पहने, कंधे पर धनुष तुनीर बांधे, कमर से खड़ग लटकाए, हाथ में भाला लिए वेदी पर आए। युवकों ने मंत्र के गणराज्य के से गणपति और महासेनापति वयोवृद्ध मिथोद्रस के आसन के सम्मुख उपस्थित होकर नासिका के सम्मुख अपनी खड़ग सीधी कर मस्तक झुकाकर निवेदन किया। मंत्र के गणराज्य की सागल नगरी का निवासी मैं अमुक नाम अमुक पुत्र शस्त्र शास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर मंत्र के गणराज्य की सेवा के लिए प्रस्तुत हूँ। गण मेरी योग्यता की परीक्षा कर मुझे सैनिक कार्य में मेरे योग्य पद प्रदान करें। गणपति ने युवकों को लक्ष्य वेद की परीक्षा के लिए सावधान होने का आदेश देकर सेवा में उपस्थित सैनिक को संकेत किया। युवकों के धनुषों पर बाण खींचे थे। सैनिक ने मंडप के वित्तान की ओर अनेक रंग के कंदुक उछालने आरंभ किए। जनसमूह कठिन लक्ष्य भेद के प्रति कौतुक से और लक्ष्य भ्रष्ट बाणों की आशंका से सिहर उठा। युवक अनेक कंदुकों को अधर में ही बेध रहे थे। सेनापति और निर्णायक ध्यान से देख रहे थे कौन युवक कितने बाणों से कितने कंदुकों को बेधता है। महासेनापति ने हाथ उठाकर लक्ष्य भेद परीक्षा समाप्त होने का संकेत किया। महासेनापति ने युवकों को कवच उतार अपने विशेष भरोसे का एक एक शस्त्र चुन लेने की आज्ञा दी। आयुष्मान इंद्रदीप और विनय शर्मा ने भाले लिए और शेष युवकों ने खग। महासेनापति ने निर्देश दिया, प्रत्येक आयुष्मान शेष युवकों को आक्रमणकारी मानकर अपनी रक्षा करता हुआ आक्रमणकारियों पर आघात करे। उन्होंने चेतावनी दी, आघात करने का अर्थ गहरा आघात करना नहीं। कोई युवक किसी प्रकार का अभिसंधि या पक्षाघात का व्यवहार न करे। यह दोनों कार्य गणराज्य के धर्मस्थान द्वारा अपराध रूप में दंडनीय होंगे। महासेनापति ने वायु में उत्तरीय हिलाकर युद्ध विराम का संकेत किया। मंडप में अनेक विद्युत शिखाएं चमक उठी और फिर 6 युवक 6 स्थानों पर आक्रमण के लिए पीठ को धनुषाकार किए नख और दांत निकाले व्याघ्रों की भांति कांपने लगे। प्रत्येक की दृष्टि सबकी ओर थी। उनके हाथों में शस्त्र क्षण भर के लिए विटान के नीचे प्रकाश की रेखाएं सी कौंध कर पुनः कंपित दीप शिखा की भांति उनके हाथों में स्थिर हो जाते। अस्तब्ध श्वास आंखें फैलाए विशाल जन समूह योद्धाओं की सूक्ष्मतम गति और इंगितों के प्रति सतर्क था। वे रह रहकर झपटते, दर्शकों के शरीर कंपित हो उठते, योद्धाओं के स्थान बदल जाते और वे मंद वायु से स्फुट ध्रुवा तृणों की भांति कांपते रह जाते। कुछ ही क्षणों में उनकी तनी हुई ग्रीवा, वस्त्र रहित भुजदंड, लोमपूर्ण वक्षस्थल और गहरी पीठ पर श्वेत बिंदु छलक कर धाराएं बह निकली। उनके शरीरों पर कई स्थानों पर लाल रेखाएं फूट कर रक्त बह गया। श्वेत में रक्त फैल जाने से उनके शरीर गेरू के पुटे जान पड़ते थे। महासेनापति के संकेत से चारण ने तुर्य बजाकर युद्ध कौशल समाप्त होने की घोषणा कर दी। युवक परीक्षा के लिए महासेनापति के आसन के सम्मुख उपस्थित हुए। आयुष्मान सक्रिय और पृथ्वीसेन के शरीर पर केवल 2 रक्त चिन्ह, आयुष्मान विष्णु के शरीर पर 3 और शेष युवकों के शरीर पर 4-4। गण परिषद के सदस्यों ने परामर्श करके महासेनानी बोले, गण परिषद और जन सुने, आयुष्मान सक्रिय और पृथ्वीसेन ने शस्त्र संचालन में विशेष कौशल प्रकट किया है। सदस्यों के विचार से पृथ्वीसेन का ही स्थान प्रथम होता, परंतु आयुष्मान ने अपने वाम पक्ष में अनेक व्यर्थ पहाड़ कर अपनी शक्ति को प्रदर्शित किया है। आयुष्मान पृथ्वीसेन में सतर्कता की न्यूनता के कारण गण सर्वश्रेष्ठ खड़गदारी का सम्मान आयुष्मान सक्रिय को देता है। महासेनापति ने श्वेत पुष्प और हरित किसले से बने मुकुट की ओर संकेत किया। बोले, नगर श्री देवी मल्लिका के शिष्याओं में जो युवती कला की प्रतियोगिता में सरस्वती पुत्री का सम्मान प्राप्त करेगी वही अपने हाथों यह मुकुट सर्वश्रेष्ठ खड़गधारी को प्रदान करेगी। चारण के तुरीनाद करने पर जनसमूह में आनंदोल्लास से जय जय का कोलाहल उठ खड़ा हुआ। युवक अभिवादन कर वेदी के नीचे आ गए, परंतु आयुष्मान पृथ्वीसेन महासेनापति के आसन के सम्मुख खड़ा रहा। खड़ग नासिका के सम्मुख सीधी नक मस्तिष्क झुकाकर पृथ्वीसेन ने प्रार्थना की, मैं महाश्रेष्ठि प्रेष्ठ का पुत्र पृथ्वीसेन परम भट्टारक गणपति के सम्मुख निवेदन की आज्ञा चाहता हूँ। महासेनानी की जिज्ञासापूर्ण दृष्टि के उत्तर में पृथ्वीसेन ने निवेदन किया, मैं पृथ्वीसेन परम भट्टारक गणपति की आज्ञा से गण के विचारार्थ निवेदन करता हूँ कि मैंने अपने वाम पक्ष में व्यर्थ प्रहार कर अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं किया। गणपति और सदस्य देखे, मैंने केवल 5 शत्रुओं का नहीं अपितु कदली स्तंभ के रूप में 6 शत्रु का भी सामना किया है। महासेनापति की अनुमति से मैं दिखाना चाहता हूँ। पृथ्वीसेन ने मंडप की वाम दिशा में स्तंभ के समीप जाकर उसके आश्रित पड़े कदली वृक्ष को हिला दिया। कदली स्तंभ खंड खंड हो गिर पड़ा। जनसमूह से इस अपूर्व खंड कौशल और हस्तलाघव की प्रशंसा में साधुवाद के उल्लास का रव उठ खड़ा हुआ। विनय से मस्तक झुकाकर पृथ्वीसेन ने महासेनानी को संबोधित किया, देव इस शत्रु का भी मैंने पराभव किया है, मैं देव का निर्णय चाहता हूँ। महासेनापति विस्मय से उच्छ्वास में अपने आसन से उठकर पृथ्वीसेन के कंधे पर हाथ रखकर बोले, मेरे निर्णय में भूल थी, आयुष्मान पृथ्वीसेन सागल का सर्वेष्ठ खड़गधारी है। गल परिषद ने साधु साधु तथास्तु कहकर समर्थन में सिर हिलाए। जनसमुदाय उल्लास से पुनः हिलोर उठा, परंतु गण परिषद की पंक्ति में से गण संवाहक आचार्य प्रवर्धन ने उठकर आपत्ति की, परिषद के सदस्य विचार करें, क्या गणपति का एक बार दिया निर्णय परिवर्तित हो सकता है। गण परिषद के सदस्य विशिष्ट समाज और जनसमूह विस्मय और आशंका से मौन रहकर आचार्य की ओर देखने लगा। वयोवृद्ध महासेनापति ने अपना आसन ग्रहण करने से पूर्व ऊर्ध्व बाहु होकर विशिष्ट गण और जन को संबोधित किया। गण परिषद सामंतगण अभिजात कुल और सागल का जन समाज महापंडित गण संवाहक आचार्य प्रवर्धन की आपत्ति सुने और विचार करे, मेरी परख में जो भूल हुई उसे मैं स्वीकार करता हूँ। वृद्धावस्था के कारण मेरे नेत्रों की ज्योति मंद हो चुकी है, मेरी दृष्टिदोष के कारण आयुष्मान के प्रति अन्याय उचित नहीं, यदि गण को मुझ पर विश्वास है तो भ्रांति मार्जन का अवसर मुझे दे। गण परिषद के सदस्य और विशिष्ट जन अवाक परस्पर प्रश्नात्मक दृष्टि से देखने लगे और जनसमूह उत्सुकता से विशिष्ट समाज की ओर। महासेनापति अपने आसन के समीप वेदी पर खड़े रहे, उन्होंने पुनः संबोधन किया, गण परिषद निर्णय करे, उन्हें मेरे भ्रांति मार्जन करने में आपत्ति है। महासेनापति ने सभी और अनुमति के संकेत में सिर हिलते देखकर पुनः घोषणा की, मैं मद्र के गणराज्य की परिषद का गणपति मिथोद्रस महासेनापति की स्थिति में दिए गए अपने निर्णय में महासेनापति की स्थिति से किए गए मार्जन को स्वीकार करता हूँ। जिस आयुष्मान को आपत्ति हो प्रकट करे। सब और मौन देखकर उन्होंने पुनः आसन ग्रहण किया, जन समूह से एक अस्पष्ट गुंजन द्वारा अपना संतोष और अनुमति प्रकट की। पुनः चारण का तुरीय बजा, वेदी से अनेक प्रकार की वीणाओं वंशियों मुर्जों कांस्य तालों और मृदंगों की ध्वनि उठने लगी। यह नृत्य संगीत आरंभ होने की सूचना थी। वाद्यों के स्वर मिल जाने पर मल्लिका ने शिष्यारूपी उद्गन के मध्य चंद्र के समान सुशोभित होकर कोकिल विनिंदित स्वर में श्याम कल्याण का आलाप उठाया। आलाप के पूर्ण हो जाने पर उनकी शिष्याओं ने अस्थायी और अंतरा में सहयोग देकर सभास्थल को गुंजा दिया। देवी मल्लिका मूर्तिमान राग के रूप में अपनी किसले कोमल अंगुलियों और मृणाल बाहुओं से संगीत के आरोह अवरोह को इंगित कर रही थी। शिष्याओं के कंठ और वादकों के यंत्र से निकली ध्वनि और जनसमूह का श्वास उनके इंगितों का अनुसरण कर रहे थे। सभास्थल घनी भूमि संगीत की लहरों से भर गया। राग समाप्त हो जाने पर भी जनसमूह मंत्रमुग्ध सहस्त्र शीर्ष शेषनाग की भांति अष्टब्द और एक प्राण बना रहा। वाद्य अब सातजी के स्वर बजा रहे थे। मल्लिका से संकेत पाकर माधुलिका ने आलाप आरंभ किया। माधुलिका के पश्चात कुसुम सेना और उसके पश्चात दिव्या ने, इसके पश्चात नर्तकी वसुमित्रा ने अपने समाज सहित गायन किया। आत्मविस्मृत जन स्वर द्वारा उत्पन्न भाव की लहरों में बहा जा रहा था। देवी मल्लिका ने आसन से उठकर जन का अभिवादन कर कृतज्ञता से मृदु स्वर में सूचना दी, कलाविद समाज अनुमति दे तो संगीत समारोह समाप्त कर नृत्य आरंभ किया जाए। मंत्र के सम्मोहन से मुक्त होकर सभा ने अपने श्वास की अवरुद्ध गति को स्वतंत्रता दी। दीप दंडधारियों ने अपने दीपों में यथेष्ट तेल डाल देने का अवसर पाया। दीप तेल के अभाव से मंद हो गए थे, परंतु संगीत की मधुर मूर्छा में विस्मित जन प्रकाश की न्यूनता अनुभव न कर पाया था। वेदी उज्ज्वल प्रकाश से दीप्त हो गई, वाद्यों के स्वर बदल गए। मल्लिका शिष्याओं के मध्य में वेदिका पर आई, जन के अपलक नेत्र उस ओर केंद्रित हो गए। रास नृत्य आरंभ हुआ, आकाश गंगा में भंवर आ गया। इसके पश्चात का नृत्य एक रूपक था। मल्लिका मेघनाथ मधवा की भूमिका में थी और उनकी शिष्याएं वर्षा के लिए आकुल पृथ्वी, मर्त्यलोक के प्राणियों मनुष्यों जीव जंतु और वनस्पति की भूमिका में थी। शिष्याओं ने आराध्य देव इंद्र को केंद्र बनाकर भावभंगी द्वारा वर्षा के लिए प्रार्थना की। मेघराज रौद्र मुद्रा में अद्रवित रहे। याचकों ने लावण्य के संयोग से करुणा की और अदमनीय उद्रेक कर अपने अनुयाय के अनुपेक्षणीय बना दिया। इंद्र द्रवित होकर बरस पड़े, धरती माता अपनी संतति सहित विभोर हो उठी। जनसमूह अपनी संपूर्ण चेतना कला की ग्राहकता में अर्पण कर अपलक आवाक और मुक्त ओष्ठ रह गया। दर्शकों को कुछ क्षण के लिए प्रकटिष्ठ होने का अवसर देकर माधुलिका ने इस पर्व के लिए तैयार किया विशेष नृत्य अभिसारिका की यात्रा प्रस्तुत किया। कुसुम सेना ने उर्वशी प्रणय निवेदन, अंत में दिव्या ने मराली का आत्मसमर्पण नृत्य किया। मल्लिका उत्सव के एक पक्ष पूर्व से ही दिव्या को इन नृत्य की मुद्राओं और वादकों को संगीत की मूर्छनाओं का अभ्यास करवा रही थी। दिव्या राजहंस के पर्व के समान श्वेत वस्त्रों में वेदी पर आई। उसकी कोमल सुगोल बाहुओं से झीने श्वेत उत्तरीय के छोर मराली के पंखों के रूप में लटक रहे थे। मराली खोज की मुद्रा में उद्विग्न और चिंताशील थी। नेपथ्य से राजहंस का ऋतुकालीन आह्वान सुनाई दिया तो पाकर मराली उत्साहित हुई थी। उत्साह और उमंग से पर्वों को फड़फड़ा कर वह आह्वान की दिशा और स्थान खोजने के लिए चली और बधिक के जाल में फंस गई। राजहंस का प्रत्येक आह्वान बधिक पास में फंसी हुई राजहंसी की व्याकुलता को उग्र कर रहा था। वह मुक्ति के लिए पूरी शक्ति से छटपटा रही थी। क्लांत राजहंसी की मुद्रा में निराशा और अवसाद प्रकट होने लगा। वह निराशा के विरुद्ध मुक्ति के लिए संघर्ष करने लगी। उसका संघर्ष असफल रहा। राजहंस का स्फूर्तिदायक आह्वान मर्मांतक वेदना का कारण बन गई। उसकी ग्रीवा निराशा भरे प्रयत्नों में उठ उठ कर रह आती। उसके पंख फड़फड़ा कर रह जाते। राजहंस की भूमिका में स्वयं मल्लिका प्रकट हुई। राजहंस मराली को बांधे जाल की उपेक्षा कर मराली के समीप कूद गया। मराली विभोर हो उठी। राजहंस भी बंध गया, परंतु किल्लोल उन्मत्त होकर उन्होंने बंधन की चिंता न की। वे मधुर शैथिल्य में आत्मविस्मृत होकर बंधन से निरपेक्ष थे। अनेक हंस शावक उस मराल मिथुन में उड़ उड़ कर चारों दिशाओं में फैलने लगे। उत्साहित जनसमूह के उत्साह भरे साधुवाद से आकाश गूंज उठा। असंख्य मुखों से मुक्त उच्छ्वास के वायु से मंडप का विटान हिलोड़ने और दीप दंडों की ज्वालाएं कांपने लगी। मंडप के समीप ही साधारण जन के समूह से एक काशीय चीवरधारी भिक्षु ने उर्ध्वबाहु खड़े होकर गंभीर स्वर में जन को उद्बोधन किया। बुद्धिमान जन देखे और जाने, माया के बंधन में जीव को इसी प्रकार सुख की मिथ्यानुभूति का भ्रम होता है। मल्लिका आदर और साधुवाद ग्रहण करने के लिए अपने आसन के खड़ी थी। उसने निरुत्साह से भिक्षु की ओर देखा। गण परिषद विशिष्ट अतिथि और जन विस्मय से भिक्षु की ओर देख रहे थे। चारों ओर छाई अष्टपता में ऊंचा स्वर सुनाई दिया, भंते दुख की भ्रांति में भी जीवन का शाश्वत क्रम इसी प्रकार चलता है। वैराग्य भीरू की आत्मप्रवंचना मात्र है। जीवन की प्रवृत्ति प्रबल और असंदिग्ध सत्य है। सभास्थल अट्टहास से गूंज उठा। मल्लिका और समाज ने देखा, उत्तर देने वाला सागल का सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार, नास्तिकता और अनैतिकता के प्रतिपादन का अपवाद पाने वाला सृष्टि उपासक पुष्यकांत का पुत्र युवक मारीच था। कला की अधिष्ठात्री देवी मल्लिका के निर्णय और परिसर की अनुमति से वयोवृद्ध गणपति ने सरस्वती पुत्री का पुष्प किरीट धर्मष्ट महापंडित देवसेना की प्रपोत्री आयुष्मती कुमारी दिव्या को भेंट किया और कुमारी दिव्या ने सर्वश्रेष्ठ खनकधारी का पुष्प मुकुट कुमार पृथुसेन को। दोनों ही पुरस्कार विजेता अपनी कला के वेश में साधारण नागरिकों से भिन्न अपनी कला के प्रतीक जान पड़ रहे थे। कुमारी दिव्या शुभ्र वायवीय श्वेत उत्तरियों में मराली का प्रतिरूप और कुमार पृथुसेन नासिकाग्र कंधों पर छाई सृष्टान और वर्ग में शस्त्र शक्ति की मूर्ति की भांति। चारण ने उत्सव विसर्जन का तूर्य बजा दिया। रात्रि के दो पहर बीत जाने पर भी जनता शांति का अनुभव न कर विश्राम के लिए व्याकुल न हुई थी। पूर्ण चंद्र चेत की स्वच्छ ताराकीर्ण आकाश में अपनी दिशा में चला जा रहा था। विराट जनसमूह दीप दंडों के प्रकाश की उपेक्षा कर मल्लिका और योद्धाओं के मार्ग के दोनों ओर टूट पड़ा। राजपुरुष कठिनता से मार्ग की रक्षा कर रहे थे। सागल की प्रथा अनुसार सरस्वती पुत्री का सम्मान पाने वाली युवती की पुष्पों से आच्छादित शिविका अभिजात वंश के युवक अपने कंधों पर युवती के गृह द्वार तक ले जाते थे। कुमारी दिव्या अपने प्रपितामह पितव्यों भाइयों और संबंधियों से आशीर्वाद और स्नेह पाकर संकोच से शिविका पर बैठ गई। अभिजात वंश के युवक उसकी शिविका के दंडों की ओर बढ़े। चार दंडों में 16 से अधिक युवकों के कंधे के लिए स्थान न था। शिविका के अग्र दंड में पहले से कंधा दिए पृथुसेन को ढकेल कर कुमार वसुधीर ने स्थान लेना चाहा। पृथुसेन ने अपना स्थान न छोड़ने का आग्रह किया। गण परिषद के संवाहक आचार्य प्रवर्धन के पुत्र वसुधीर के श्रेष्ठ आयुष्मान रुद्रधीर ने ललकारा, दास पुत्र को अभिजात वंश के पुरुषों के साथ शिविर में कंधा देने का अधिकार नहीं है। पृथुसेन कति से खड़क खींच पैतरे से खड़ा हो गया और बोला, मेरे अधिकार का निश्चय मेरा खड़क करेगा। शिविका के चारों ओर अनेक खड़क कोषों से निकल आए। अनेक वयोवृद्ध गुरुजनों के बीच में आकर वार न और भर्त्सना करने से अधिक विसृंगता और रक्तपात न हो पाया। सरस्वती पुत्री की शिविका देवी मल्लिका के रथ के सम्मुख जनता के जय जयकार के कोलाहल के बीच अभिजात वंशीय युवकों के कंधों पर बुद्ध प्रवाह के ऊपर ऊपर क्षुब्ध लहरों से दोलायमान नौका की भांति डगमगाती नगर की ओर चली गई। कुमार पृथुसेन घायल व्याघ्र के समान क्रोध से कांपता कुछ समय तक चंद्र के स्निग्ध प्रकाश में अपने अश्वरक्षक के समीप खड़ा रहा। हृदय में प्रज्वलित क्रोध की अग्नि का धुआं मस्तिष्क से घुट जाने के कारण वह क्षुब्ध और विहल हो उठा। जन्म का अपराध, यदि वह अपराध है तो उसका मार्जन किस प्रकार संभव है। शस्त्र की शक्ति, धन की शक्ति, विद्या की शक्ति, कोई शक्ति जन्म को परिवर्तित नहीं कर सकती। कोई भी उपाय जन्म के अपराध का मार्जन नहीं कर सकता। जन्म के अन्याय का प्रतिकार क्या मनुष्य दैव से ले या उन लोगों से ले जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए जन्म से असत्य अधिकार की व्यवस्था निर्धारित की है। हीन कहे जाने वाले कुल में मेरा जन्म अपराध है अथवा यह द्विज कुल में जन्मे अपदार्थ लोगों का अहंकार मात्र। पृथुसेन मन में उबलती घृणा और प्रतिहिंसा के लिए मांग न पा, क्रोध में दांतों से होंठ दबाए, समूह से बचता हुआ अपने प्रसाद की ओर चला गया।